क्षितिज एक सार्थक यात्रा नई क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवव्रत सिरतन आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्षितिज कार्यक्रम के बारे में दो शब्द। क्षितिज एक पाक्षिक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत हिंदी से जुड़ी विश्व की गतिविधियों, हिंदी के प्रचार प्रसार, विभिन्न देशों द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं, हिंदी के उत्थान में लगे विद्वानों लेखकों का योगदान, हिंदी साहित्य व अनुवाद को बढ़ावा देने और वैश्विक हिंदी तथा भारतीय संस्कृति पर बातचीत की जाती है। आज हमारे मध्य में श्रीमती मीला धनुकचंद जी उपस्थित हैं। श्रीमती धनुकचंद जी नमस्ते।
नमस्ते।
तो आपसे कुछ सवाल करने जा रहे हैं, मगर इससे पहले दो शब्द आपके बारे में। आप शिक्षा जगत से सालों तक जुड़ी रही। 70 से 84 के सालों तक आप सरकारी संस्थाओं में उच्च पद संभालती रही। प्रशासनिक अहदों पर आप कार्य करती रही और चीफ टेक्निकल ऑफिसर के पद से आपने अवकाश लिया और इन दिनों आप भाषा और सामाजिक कार्यों में लगी हुई है। श्रीमती मीला धनुचंद जी, आप हमें कुछ प्रश्नों के बारे में कुछ बताइए। पहला प्रश्न जो आपसे करने जा रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि मॉरिशस अफ्रीकी महाखंड से जुड़ा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। इस तरह आपसे यही प्रश्न करूंगा कि दक्षिण अफ्रीका के बारे में हिंदी की जो स्थिति है उसके बारे में हमें दो शब्द बताइए।
सही है कि जब हम चर्चा करते हैं तो दक्षिण अफ्रीका को खंड के रूप में मान रहे हैं, और यदि हम दक्षिण अफ्रीकी देशों में हम जुड़े हुए हैं, मॉरिशस उनके बीच एक देश माना जाता है, तो फिर भी हम अगर हिंदी भाषा की चर्चा कर रहे हैं तो हम इस बात को भुला नहीं सकते कि हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अपने आप में बड़ी प्रगतिशील प्रतीत होती है। आज के संदर्भ में यदि आप देखें तो विश्व की जो चार प्रमुख भाषाएं हैं उनमें चौथी भाषा हिंदी को माना जाता है, जैसे कि मैंडरिन है, स्पेनिश है, अंग्रेज़ी भाषा है और हिंदी है। और यह हम भुला नहीं सकते हैं कि विश्व के जो 7 बिलियन की जो जनता है, उनकी आबादी है, उस आबादी में से 1.3 बिलियन हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में, और हिंदी भाषा 150 देशों में बोली जाती है, उसका व्यवहार किया जाता है। और उन 150 देशों में आप विश्वास नहीं होता है कि विश्व के किस किस कोने में हिंदी बोली जाती है। पाकिस्तान, नेपाल, मॉरिशस, त्रिनिदाद, फिजी, बांग्लादेश आदि के तो छोड़िए, जिबुची में, कनाडा में, बोत्सवाना में, सिंट मार्टिन में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जैम्बिया में, कितने सारे देशों में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो ये हिंदी जगत के लिए गर्व की बात है, और यह इस ओर इंगित करता है कि हिंदी जो है देश भाषा की परिसीमा को लांघ कर बहुत आगे पहुंच गई है। और हिंदी भाषा जो है राजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में, जनभाषा के रूप में, इन सब को पार कर गई है। और आज के संदर्भ में विश्व भर में यह नारा लगाया जा रहा है कि हिंदी विश्व भाषा के अन्य भाषाओं के बीच में क्यों नहीं मानी जाती है।
जब दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं तो जिस प्रकार से भारत से लोग मॉरिशस आए थे, इसी प्रकार से लोग दक्षिण अफ्रीका भी गए। तो दक्षिण अफ्रीका में वहाँ पर हिंदी की जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति और उसके संरक्षण में लोग क्या कार्य कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बताइए हमें।
यह सही है कि भारत से जब लोग अन्य देशों में गए तो अपने साथ साथ अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को भी लेकर गए। हम सभी जानते हैं कि भाषा गई तो संस्कृति गई का जो नारा है वो विश्व भर में अपना बड़ा अक्षुण महत्व रखता है। और इसका आधार स्तंभ क्या है कि जब ये लोग विदेशों में गए तो अपनी संस्कृति को और भी ज़ोर से पकड़कर अपने साथ रखे। क्यों? क्योंकि जो उन देशों की संस्कृति थी वो उनकी संस्कृति से विलग थी, तो इनका आधार स्तंभ क्या बना? हिंदी की जो विकास यात्रा है उसका आधार स्तंभ बना धार्मिक विश्वास, लोगों का संस्कृति का संरक्षण करना, और इनको अपनी बपौती मानकर इन लोगों ने खून का जो उनका संबंध था अपनी भाषा से और अपनी संस्कृति से उसको बनाए रखने का प्रयास किया। दक्षिण अफ्रीका में अपनी भाषाएं थीं, जैसे कि वहाँ तो आधिकारिक भाषा का दर्जा 11 भाषाओं को प्राप्त था, जिसमें कि अफ्रिकांस, दक्षिणी दिबिली, उत्तरी सोथो, दक्षिणी सोथो, स्वाजी, सोंगा, स्वाना, शोसा, जुलू, इतने सारे थे। और इनसे अलग वहाँ 8 अन्य गैर आधिकारिक भाषाएं थीं जिनको भी मान्यता प्रदान थी, और वो थी फनागालो, खोई, लोबेदो, नामा, उत्तरी दिबिली, कुथी, सान और दक्षिण अफ्रीकी साइन भाषा। ये सारे के सारे वहाँ मान्यता प्राप्त थे। लेकिन जब भारत के लोग वहाँ गए तो वो अपनी भाषाएं लेकर गए, और वो जो अन्य भाषाएं थी दक्षिण अफ्रीका से अलग वो थी तमिल, हिंदी, तेलुगु, गुजराती, उर्दू और मराठी। और इन लोगों ने इन भाषाओं को लेकर उस देश में इसका प्रचार प्रसार किया। अंग्रेजी भाषा तो थी लेकिन केवल 7.2% लोग इसका प्रयोग करते थे। तो ये जो भाषा गई तो संस्कृति गई का जोश था, ये बड़ा जोर पकड़ता गया, क्योंकि 1860 में जब प्रवासी भारतीयों का आगमन हुआ तो केवल धार्मिक और सांस्कृतिक अवसर ही भाषा के विकास के मंच बने, परंतु संरक्षण, प्रचार प्रसार इत्यादि जो सामाजिक संगठन थे ये वहाँ पर जोर पकड़ते गए। वहाँ जो आप्रवासी थे वो भोजपुरी में बोलते थे, परंतु उनका सतत प्रयत्न रहता था कि वो हिंदी भाषा में बोलें और खड़ी बोली का प्रयोग करें। सो यह देखा गया कि दक्षिण अफ्रीका में जितने भी सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाएं थी वे सब के सब जो है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार द्वारा अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपने धर्म का संरक्षण बनाए रखने का प्रयास करते रहे। और हम जानते हैं कि वहाँ पर आए थे स्वामी शंकरानंद जी और फिर स्वामी भवानी दयाल सन्यासी, वो सारे इस क्षेत्र में जो है बड़े महत्वपूर्ण योगदान देते गए।
थोड़ा सा आज के युग में हमें कुछ बताइए, कई बार पंडित वेदालंकार जी का नाम लिया जाता है कि तो हाँ, उसके बारे में कुछ हमें बिल्कुल बताइए।
पंडित नरदेव वेदालंकार 1947 में दक्षिण अफ्रीका में गए, और जब वो वहाँ गए तो उनका जो लक्ष्य था वो एकदम पते का था कि वो चाहते क्या थे। और उन्होंने वहाँ पर राष्ट्रीय हिंदू धर्म सेवी जितने भी संगठन थे, जैसे कि आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन धर्म सभा, और वहाँ पर उन सब की उन्होंने संगोष्ठी लगाई। अब ये जो है एक प्रकार से लोगों को एकत्र करने का और सारे देश को एक और एक दिशा दिलाने का उन्होंने प्रयास किया, इसलिए उनको जो है बड़ा महत्व दिया जाता है। और भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं उनको दासता से मुक्त करने, उनकी दशा को और उनकी मातृभाषा के संरक्षण और प्रचार प्रसार में बड़ा प्रयास किया। और हम जानते हैं कि उन्होंने हिंदी शिक्षा संघ की स्थापना की, ये एकदम भाषा की ओर इंगित करता है कि चाहते क्या थे। कि यहीं से ना वो बात आ जाती है फिर से कि भाषा गई तो संस्कृति गई, तो उन्होंने इस संघ की स्थापना की और इसके द्वारा उन्होंने लगभग 27 वर्षों तक अथक परिश्रम किया और उन्होंने भाषा और संस्कृति को बहुत बड़ा योगदान प्रदान किया। ये जो हिंदी भाषा, हिंदी शिक्षा संघ थी, हिंदी शिक्षा संघ के लक्ष्य जो है बड़े ही महत्वपूर्ण थे। इसमें है कि सभी पहलुओं में हिंदी भाषा के सीखने को उन्होंने बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए लिखित और मौखिक परंपराओं को, दोनों को महत्व दिया कि करो प्रयास, लिखो भी और बातचीत बोलचाल में भी प्रयोग करो। दूसरा उनका जो लक्ष्य था वो था कि धार्मिक ग्रंथ का अकादमिक अध्ययन बढ़ावा दिया जाए कि अधिकाधिक लोग जो है इसको ऐसे सीखें जैसे कि किसी ग्रंथ का लोग अध्ययन करते हैं। और जो उत्तर भारतीय संगीत नृत्य नाटक कला आदि के जो संदर्भ हैं इन सब के प्रचार प्रसार को महत्व दिया। इस प्रकार उनके जो लक्ष्य थे इन तीन पहलुओं को एकदम लोगों के समक्ष रखते हैं कि लिखित मौखिक धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। और फिर उन्होंने कहा कि ये जितनी भी हमारी कलात्मक अभिव्यंजना है उसको हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्व दिया जाए। इस तरह करके उन लोगों ने पूरी दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने 52 हिंदी पाठशालाओं का निर्माण किया या जगह जगह पे उन्होंने ऐसी पाठशालाएं खोली, शिक्षण प्रशिक्षण किया, पाठ्यक्रम का परिवर्धन किया और उन्होंने पाठ्य पुस्तक लेखन आदि पर महत्व दिया और परीक्षा। इस तरह हम देखते हैं कि जो हिंदी की शिक्षा थी वो विधिवत स्वरूप प्राप्त करने लगी कि केवल बोली न जाए, केवल जगह जगह में प्रयोग न किया जाए, लेकिन उसका एकदम आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने शिक्षा को यह स्वरूप दे डाला कि पठन पाठन हो, पाठ्यक्रम भी हो, पुस्तक लेखन भी हो और परीक्षा भी हो और उसका महत्व बढ़े। इस तरह करके डर्बन में, मिडलैंड्स में, साउथ कोस्ट में, गोटिंग में, पोर्ट एलिजाबेथ में, नताल में, ईस्ट लंदन, इन सारी जगहों में उन्होंने मिल मिला के इतनी सारी संस्थाएं खोल डाली। और हम जानते हैं कि सन 2015 में उन लोगों ने बहुत बड़ी कार्यशाला लगाई थी अध्यापकों की कि किस तरह अब आगे जो है जो आधुनिक काल है आधुनिक काल के लिए क्या किया जाए। और वहाँ पर एक जो बड़ा महत्व प्राप्त करने लगे है वो है हिंदी की खबरें
जी।
तो बाल संस्कार केंद्र हैं, वेद पाठशालाएं हैं, ये सारे जो हैं अपनी ओर से जो है धार्मिक भजन कीर्तन प्रवचन योगाभ्यास और जितने मंत्र उच्चारण है इन सब चीज़ों के बारे में प्रचार प्रसार करते हैं और बताते रहते हैं लोगों को कि कहाँ पर किस प्रकार की कार्यशाला लग रही है या किस प्रकार की गतिविधि हो रही है। परंतु आज के संदर्भ में सबसे जो महत्वपूर्ण जोर पकड़े हुई है वो है हिंदवाणी। तभी तो इस इतिहास को सर्वाधिक जैसे स्वर्णिम स्वरूप प्रदान करने के लिए भोपाल में जो विश्व हिंदी सम्मेलन लगा था उस सम्मेलन में प्रोफेसर शुक्ला को विश्व हिंदी सम्मान से नवाजा गया। शायद हिंदवाणी के बारे में हम एक दो बातों की चर्चा कर डालें कि यह जो है एकदम जितने भी युवा पीढ़ी है युवा पीढ़ी को एकत्र करके उन्होंने युवा पीढ़ी की जो इच्छाएं हैं उन वो कौन सी चीज़ें पसंद करते हैं और किस तरह भाषा को महत्व दे सकते हैं उन सब पर उन्होंने पूरा प्रयास किया। इस तरह उनका जो रेडियो है उनकी जो टेलीविज़न है उन सब में वो बॉलीवुड इत्यादि को महत्व देकर जो युवा पीढ़ी है उनको बहुत आकर्षित करते हैं और सारी जितनी ताज़ी खबरें होती हैं उनका प्रसारण करती रहती है।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बस हम ये आशा करते हैं कि उनका जो प्रयास हो वो सार्थक हो और वो रंग लाए। तो इस प्रकार से आप हमारी मांग पर आप यहाँ पर स्टूडियो में आई। आप बस हमें लगता है कि और एक कार्यक्रम होना चाहिए जिसमें इस पर ज़्यादा जान दी जा सकती है ताकि हमारे श्रोता लाभान्वित हो इससे। और आज का जो हमारे कार्यक्रम यहाँ पर समाप्त होने जा रहा है इसे आप तक पहुंचाने में सुनील लक्ष्मण का सहयोग रहा। अगले कार्यक्रम तक हमें आगे दीजिए। नमस्कार।
धन्यवाद और नमस्कार।